वचन। नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, आज हम भजन संहिता 85 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा आप हमें नई नई बातों को सिखाते और समझाते हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग तैयार करते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सीखें अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के तनाव में हैं। आप उनकी सुधि लीजिए, उनकी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन संहिता 85 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। आज का विषय है इसराइल का भावी पुनरुद्वार, प्रधान बजाने वाले के लिए कोरह वंशियों का भजन। कुछ विचारकों ने इसे एज्रा और नहेमिया के मार्गदर्शन में इसराइल के स्वदेश लौटने के समय का भजन कहा है, परंतु सच तो यह है कि इस भजन का ऐसा कोई संबंध नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये विचारक इस भजन को भविष्यवाणी से संबंधित नहीं मानते। हमारे अध्यायाधीन वे भजन अनेक लेखकों द्वारा लिखे गए हैं और विचित्र बात तो यह है कि इन भजनों को क्रमबद्ध इसलिए किया गया है कि वे एक कहानी सुना रहे हैं। यद्यपि मैं क्रम विन्यास को आत्मा प्रेरित नहीं मानता हूं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी व्याख्या की देखरेख परमेश्वर के हाथ में ही रही होगी। हमने यह तो देखा है कि ये भजन क्रम में व्यवस्थित हैं, यहां एक समूह तो वहां एक समूह, जो भविष्यवाणी का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह भजन की भविष्य के संबंध में है और मैं मनुष्य द्वारा दी गई किसी भी व्याख्या में विश्वास नहीं करता जो इसे परमेश्वर का वचन नहीं मानता है। किसी प्रचारक ने इस संबंध में एक बड़ी अच्छी बात कही, हम एक पागल को विश्वास के साथ वकील बना लें, एक नकली डॉक्टर को डॉक्टर मान लें, भेड़िये को भेड़ों का रखवाला और कुत्ता मान लें और मगरमच्छ को शिशु का रक्षक मान लें, परंतु परमेश्वर के वचन का आधुनिक अनुवाद और प्रचार नहीं। मैं इसके लिए आमीन कहता हूं। मेरे विचार में हमें उन व्याख्याओं की आवश्यकता है जो बाइबल को परमेश्वर का वचन मानते हैं और परमेश्वर भविष्य को उतना ही अच्छा जानता है जितना पूर्व काल को। इस भविष्यवाणी पर आप ध्यान दें। भजन संहिता 85 उसके एक पद में लिखा है, हे यहोवा, तू अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। अधिकांश विचारकों का मानना है कि यह पद बाबुल की बंधुआई से स्वदेश लौटने वाले इसराइलों से संबंधित है, परंतु वे तो कुछ ही इसराइली थे जो लौटकर स्वदेश आए थे, 60,000 से भी कम। अधिकांश यहूदी तो बाबुल में ही बस गए थे, अतः यह बाबुल की बंधुआई के युग की अपेक्षा उस भावी युग की ओर देखता है जब प्रभु अपने राज्य में सब इसराइल वंशियों को स्वदेश लौटा लाएगा। भजन संहिता 85 के दो पद में लिखा है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप लिया है। यह कैसा महिमामय दृश्य है। यह तो एक भावी घटना ही हो सकती है। यह निश्चय ही बाबुल की बंधुआई से लौटने की परिस्थिति नहीं है। यदि आप इसे उस समय की परिस्थिति में मानते हैं तो एज्रा, नहेमिया, हगै, जकरिया और मलाकी की पुस्तकों का अध्ययन करें। मलाकी ने यहूदियों को परमेश्वर से दूर होने के कारण क्यों झिड़का था? वे मंदिर में बलि चढ़ाते थे, परंतु उनका मन परमेश्वर से दूर था। यह भजन तो पूर्ण रूपेण एक भिन्न परिदृश्य प्रस्तुत करता है। भजन संहिता 85 के 3 पद में लिखा है, तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। यह पद उस समय की चर्चा करता है जब इसराइल का दंड समाप्त हो जाएगा। इसराइल और संसार का सबसे बुरा समय तो अभी आने वाला है। महाक्लेश विश्वव्यापी होगा और वह समय दंड का होगा। शैतान को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और पवित्र आत्मा बुराई पर नियंत्रण नहीं रखेगा। परमेश्वर मनुष्य की सीमाएं पार करने देगा और फिर दंड देगा। उस दिन परमेश्वर की संतान का दंड समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, पाप का विषय तो उसी दिन समाप्त हो गया था जब प्रभु यीशु जगत के पापों के लिए क्रूस पर मर गया था। जैसा कि एक गीतकार ने लिखा है, पुराना लेखा तो समयों पूर्व पूरा हो गया है, परंतु एक बात मुझे परेशान करती है और वह है कि मुझे प्रभु यीशु के न्यायासन के सामने खड़ा होना होगा कि मैं अपने जीवन और कर्मों का लेखा दूं। हमारे काम आग से परखे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। मैं अपने कामों के विषय आत्मविश्वास से कुछ नहीं कह सकता। पौलुस भी स्वयं का न्याय नहीं करता है क्योंकि वह जानता था कि केवल परमेश्वर ही न्याय कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि वह कहेगा, मेरे विश्वास योग्य सेवक साबास, परंतु मुझे प्रतीक्षा करके देखना होगा। मेरे प्रियो, महाक्लेश के समय हर बात बुराई और दंड के लिए ध्यान में लाई जाएगी, अतः मैं उस समय यहाँ रहना नहीं चाहता और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं नहीं रहूंगा। ऐसे समय में कलीसिया को उपस्थित मानना महाक्लेश के अर्थ से चूक जाना है। भजन संहिता 85 के 4 और 5 पद में लिखा है, हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? मेरे मित्रों, वह दिन आने वाला है जब इन लोगों के कष्टों का अंत होगा। हम पिछले अध्ययन में देख चुके हैं कि इतिहास में इसराइल ने दुख के आंसू ही पिए हैं, परंतु वह दिन आता है कि यह सब समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर उनके सब आंसू पोंछ डालेगा। भजन संहिता 85 के 6 पद में लिखा है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। आज अनेक कारणों के निमित्त कलीसिया में जागृति का आना आवश्यक है, जिनमें से एक कारण है विश्वासियों के जीवन में आनंद की कमी। आनंद अनिवार्य है परंतु है नहीं। भजन संहिता 85 के 7 पद में लिखा है, हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। इसमें तो हम सबके मन लग सकते हैं। परमेश्वर बुराई से घृणा करता है और उसका दंड देगा, परंतु उसके पास आने वालों के लिए वह दया और उद्धार करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 85 उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपने प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। पाप पर परमेश्वर के अंतिम दंड के बाद उसके जन गलती नहीं करेंगे क्योंकि जगत से पाप का निराकरण हो जाएगा। भजन संहिता 85 के 9 में लिखा हुआ है, निश्चय उसके डरवये के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आज इसराइल में महिमा का वास नहीं है। मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता है, परंतु चट्टानों की अपेक्षा वहां पर महिमा नाम है ही नहीं। निसंदेह हम विश्वासियों के लिए वहां पवित्र स्थान है। अब यह धर्मशास्त्र का एक और विशिष्ट पद आता है, भजन संहिता 85 का 10। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। करुणा और सच्चाई हमारे युग में एक साथ नहीं चलते, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। आज तो वे परस्पर संबंध भी नहीं रखते हैं। आज संसार में शांति न होने का एक कारण यह भी है कि संसार में धार्मिकता नहीं है। मेरे मित्रों, संसार में शांति आने से पूर्व परिस्थितियों का सही होना आवश्यक है। आज कहीं भी हमारे जीवन में भी सत्यवादिता नहीं है। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, पृथ्वी पर शांति नहीं होगी। यह एक अनुपम पद है। भजन संहिता 85:13 में लिखा है, धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। प्रभु यीशु जब फिर आएगा, तब वह धार्मिकता से राज करेगा और हम उसके पीछे चलेंगे। मित्रों, यहाँ पर भजन संहिता 85 समाप्त होता है। अब हम भजन 86 से आगे अध्ययन करेंगे। विषय है, दाऊद भावी राज्य की प्रार्थना करता है। यह दाऊद का भजन है जिसमें वह प्रार्थना करता है। यह एक विशेष भजन इसलिए है कि इसमें दाऊद परमेश्वर का एक और नाम प्रकट करता है। हम देख चुके हैं कि एलोहिम अर्थात सृजनहार परमेश्वर और यहोवा अर्थात उद्धारक परमेश्वर, इस भजन में 7 बार परमेश्वर का नाम अदोनाई अर्थात प्रभु आया है। यह शब्द आज तक धार्मिक प्रवृत्ति के यहूदी काम में लेते हैं। एक रूढ़िवादी यहूदी यहोवा शब्द को कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वह उसे महापवित्र मानता है। इस कारण वह प्रभु शब्द काम में लेता है। प्रसंगवश यहोवा नाम का उच्चारण भी अज्ञात है, क्योंकि केवल 4 अक्षर यह हुआ ही लिखे जाते हैं। यहाँ प्रभु से अभिप्राय है उद्धारक परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर। क्योंकि प्रभु शब्द 7 बार आया है, इसलिए इस भजन को मसीह से संबंधित माना जाता है। परंतु प्रार्थना को देखकर मैं नहीं मानता कि यह भजन मसीह से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण के लिए भजन संहिता 86 उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। मेरे मित्रों, आप इस पद को किसी भी रूप में प्रभु यीशु से संबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करता। वह तो परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया था। यह पद निश्चय ही आपसे और मुझसे संबंधित हो सकता है। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के मार्ग और सत्य को सीखें। हमारे मन उसके नाम का भय मानने के लिए एक होने चाहिए। प्रभु यीशु तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आया था और उसने की भी, परंतु हमारे साथ भिन्न है। F.W. ग्रांट इस विषय पर अति असामान्य बात कहता है, परमेश्वर के जनों में निस्संदेह एक महान कमी है। हमारा जीवन सुस्पष्ट दुराचार में तो नहीं, परंतु समय गंवाकर छोटी छोटी असंख्य ऐसी बातों में खो गया है कि परमेश्वर की सुस्पष्ट गवाही का प्रभाव धूमिल अवश्य हो गया है। प्रेरित पौलुस के साथ कहने वाले कितने कम हैं, मैं बस यही एक काम करता हूँ। हम मार्ग में हैं, जानबूझकर तो नहीं, परंतु हम फूलों पर बैठी तितलियों के पीछे भागने लगते हैं और वास्तविक उन्नति नहीं करते। शैतान को यह देख कैसा आश्चर्य होता होगा कि हम संसार के राज्यों और उनकी महिमा से विमुख हो गए, क्योंकि हमने उन्हें उसकी परीक्षा समझा। परंतु फिर भी हम अनंत छोटी छोटी बातों के अनर्थ विचारों में फंस जाते हैं। जो कटीली झाड़ी उसे अधिक नहीं जिन्हें एक बच्चा उखाड़ने में पूरी शक्ति लगा देता है, और हम उस पर हंसते हैं। यदि हम ऐसे रुचि में अपने जीवन का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें, तो हमें असंख्य अनावश्यक चिंताओं और काल्पनिक उत्तरदायित्वों का बोध होगा, जो हमें एकमात्र लाभ की बात से निरंतर पथ भ्रष्ट करते रहते हैं। कितने कम लोग हैं जो दिन प्रतिदिन ऐसा आत्मनिरीक्षण करते हैं जो उनके जीवन का अव्यक्त इतिहास है। मेरे प्रियो, आज अनेक मसीही सेवक प्रकट पाप से तो बचे हुए हैं, परंतु वे आलसी हैं, वे समय गंवाते हैं, वे यहाँ वहाँ व्यस्त रहते हैं, परंतु मुख्य कार्य नहीं करते। वे थाथी की रखवाली नहीं करते और प्रभु की सेवा के निमित्त सतर्क नहीं हैं। हमें यह प्रार्थना करने की कैसी आवश्यकता है, तेरे नाम का भय मानने के लिए मुझे एक चित कर। इससे पूर्व प्रार्थना करता है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा। मेरे विचार में यह भटकते और दुचित्ते मन का समाधान है। अपने मन परिवर्तन के बाद पौलुस ने जो पहली बात कही वह थी प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 6 पद में, हे प्रभु तू कौन है। भजनकार के पास उत्तर था, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा। परमेश्वर ने अपने संतान को अपने मार्ग सिखाने की प्रतिज्ञा की है, भजन संहिता 32:8 पद में, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए, मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलें, तब हम अपने संपूर्ण मन की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। हमारा मन जितना अधिक उसे समर्पित और एक चित होगा, उतना ही अधिक हमारी प्रशंसा होगी। भजन संहिता 86:12 पद में लिखा हुआ है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 86 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और भजन 87 में देखते हैं, जिसका विषय है सियोन, परमेश्वर की नगरी। कोरह वंशियों का भजन गीत है। मेरे विचार में यह कोरह वंशियों का भजन है। यह भजन परमेश्वर की नगरी के विषय में है और यरूशलेम के महिमामय भविष्य की चर्चा करता है। यरूशलेम में सब जातियां आराधना करने के लिए आएंगी। कुछ लोग आज भी इसराइल में भ्रमण करने के लिए जाते हैं और जब वे सियोन की ओर जाते हैं, जो यरूशलेम का सबसे ऊंचा स्थान है, उस समय सब गाते हुए जाते हैं, हम परमेश्वर के अनुपम नगर सियोन की ओर यात्रा करते हैं। परंतु यह गीत वास्तव में अर्थहीन है, क्योंकि यह सियोन एक भौगोलिक स्थान है। भजन संहिता 87:1 पद में हम पढ़ते हैं, उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है। जी हाँ, एक दिन वैश्विक सरकार यही होगी। यशाया 2:2 पद में लिखा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और जकरिया के पुस्तक 2:10-11 पद में लिखा है, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। स्मरण रखें कि हम अभी तक लय वर्ग के भजनों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका केंद्र मिलाप वाला तंबू और मंदिर है। भजन संहिता 87:2-3 पद में लिखा है, और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषम महिमा की बातें कही गई हैं। भजन 48 में भी यही विचार व्यक्त किया गया है, पद 1-2 में, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारे पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। तब हम भजन 87:4 पद में पढ़ते हैं, मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा, पलिस्त, सोर और कूस को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था। यह रहब यरेहो की वेश्या नहीं, मिस्र की है। देखिए यशाया के पुस्तक 51:9 पद, भजन संहिता 89:10 पद, यह दक्षिणी विश्व शक्ति का प्रतीक है और बाबेल अर्थात बाबुल उत्तरी विश्व शक्ति का प्रतीक है। रहब का अर्थ है कोलाहल और बाबेल का अर्थ है अव्यवस्था। इन जातियों का कोलाहल और अव्यवस्था प्रभु यीशु के सियोन स्थित सांसारिक राज्य में समाप्त हो जाएगी। यह अति रोचक है कि सियोन अनेक जातियों का जन्म स्थान होगा। यीशु के राज्य में संसार यरूशलेम आएगा और अनेक जातियों का मन फिराव होगा। देखिए वह पलिस्त, सोर तथा कूश की चर्चा भी करता है। यह एक अति रोचक बात है कि जब सुसमाचार इसराइल से बाहर निकला, तब एक कुशी खोजे का मन फिराव सर्वप्रथम अन्य जाति की घटना में है। प्रेरितों के काम 8 में हम इसे पाते हैं। उसका नया जन्म वहां रेगिस्तान में हुआ था, परंतु यहां भजनकार मेरे विचार में कहता है संपूर्ण कुश देश की चर्चा कर रहा है। यह भविष्य की घटना है। भजन संहिता 87:5 पद में लिखा है, और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उससे उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। राजाओं का राजा सियोन को संसार की राजधानी बनाएगा। भजन संहिता 87 के 6 पद में लिखा है, यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा तब यह कहेगा यह वहां उत्पन्न हुआ था। उस दिन अनेक मनुष्य प्रभु को ग्रहण करेंगे, उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि ख्रिस्त विरोधी ने उन्हें धोखा दिया है। वह कैसा महिमा से पूर्ण समय होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजन संहिता 87 समाप्त होता है और अब हम भजन संहिता 88 में देखेंगे जिसका विषय है कष्टों में परमेश्वर पर भरोसा। गीत कोरह वंशियों का भजन है। प्रधान बजाने वाले के लिए महल तल ग्लोनत राग में इज़रा वंशी हेमान का मश्किल है। यह एक दुखद गीत है। भजन 87 महिमा का था और यह विषाद का भजन है। यह एक विलाप गीत है और भजन संग्रह में सबसे अधिक अंधकार की हाय है। तो आइए हम भजन संहिता 88 के 1 पद को पढ़ें। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। इस भजन में एकमात्र आशा की किरण है कि परमेश्वर मेरा उद्धार है। भजनकार इसी को थामे हुए है। यह मात्र एक कल्पना है कि यह भजन अय्यूब और कोढ़ग्रस्त उज्जियाह, इर्मियाह और रोगी हिजकिय्याह से संबंधित है। चाहे जो भी हो, इसका लक्ष्य रहा हो, यह भजन घोर संताप को प्रकट करता है। परंतु कष्टों और क्लेशों में वह परमेश्वर पर उद्धार का विश्वास रखता है। यह इस भजन का एक महान विषय है। भजन संहिता 88 उसके 2 पद में लिखा हुआ है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। वह अत्यधिक संकटपूर्ण स्थान में है। क्रोध, मृत्यु, कब्र और अंधकार सब एक साथ उस कष्टपूर्ण मनुष्य पर आ गए हैं। भजन संहिता 88 उसके 16 से 18 पद में हम पढ़ते हैं, तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है, उस भय से मैं मिट गया हूँ। वह दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वह मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। मेरे प्रियो, अन्य भजन जो घोर निराशा से आरंभ होते हैं और मुक्ति के आनंद से समाप्त होते हैं, इस भजन से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि यह भजन अंधकार के साथ अंत होता है। हेंगर वर्ग ने कहा, यह भजन अपने मुख्य विचार की जीवंत अभिव्यक्ति के साथ अंत होता है। मृत्यु का निकट परिप्रेक्ष्य, अंधकार वैसा ही घना है जैसा भोर के समय होता है, सूर्योदय से पूर्व। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है। क्या आज आप अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत कर रहे हैं या उजाले में? परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी निकटता में आए। जिस प्रकार भजनकार कहता है कि हम अपने जीवन को अंधेरे में न रखें, मेरे प्रियो, आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं। आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और कहें कि प्रभु, मैं आपकी निकटता में आना चाहता हूँ, इस अंधकार से बाहर निकलना चाहता हूँ, और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआस लोगों हिम्मत है यीशु।
तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम।
तो गालो
गालो ये सुना, बन जाएंगे काम।
तू गालो ये
सब हर जाए,
दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम न आए, इस दुनिया में सब हर जाए।
दुनिया किसी के काम
जो हाथ छोड़ेगा न साथ,
वो पकड़े जो हाथ छोड़ेगा न साथ।
तो गालो ये सुनाम बन जाएंगे काम,
तो गालो ये सुना
श्रोताओ। अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत,
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत,
चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत।
जो हो गए बेजान डालेगा